एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी, एक असाधारण किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। थी बुई की ग्राफिक संस्मरण है ये, द बेस्ट वी कुड डू। ये असल में सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कहानी है एक परिवार की जो वियतनाम युद्ध की आग से निकलकर अमेरिका पहुंचा।
बिल्कुल।
और कहानी सुनाई है उनकी बेटी ने, तस्वीरों और शब्दों के जरिए।
बिल्कुल, ये कोशिश है अपने माता पिता के अतीत को समझने की, उनके अनकहे दर्द को, और वो जो असर होता है ना पीढ़ियों तक चलने वाला, उसको समझने की एक बहुत ही मार्मिक यात्रा है ये।
हाँ, और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये ग्राफिक संस्मरण है, मतलब कहानी चित्रों के जरिए कही गई है, और शब्द और चित्र मिलकर वो एक बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली प्रभाव छोड़ते हैं।
सही।
थी बुई, जो खुद एक कलाकार हैं, एक शिक्षिका हैं, माँ हैं, वो महसूस करती हैं अपने बेटे के जन्म के बाद कि अरे, वो अपने माता पिता, बो और माँ जैसा वो उन्हें बुलाती हैं, उनके जीवन के बारे में तो लगभग कुछ जानती ही नहीं।
अच्छा, मतलब वो शरणार्थी बनकर आए थे वियतनाम से। पर
हाँ, पर उनका अतीत जैसे एक बंद किताब था, तो ये संस्मरण, ये किताब उनकी इसी खोज का नतीजा है। अपनी जड़ों को टटोलना और जो पारिवारिक रिश्तों की उलझी हुई परतें होती हैं ना, उन्हें खोलने की कोशिश।
तो मतलब ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं हुई, इसमें इतिहास है, विस्थापन है, और वो चीज जिसे हम कहते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा।
हाँ, अंतर पीढ़ीगत आघात, कैसे एक पीढ़ी का दर्द अनजाने में ही सही अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है।
तो चलिए इस भावनात्मक और ऐतिहासिक सफर को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत।
जरूर। तो शुरुआत होती है थीबुई के जन्म से भी पहले, उनके माता पिता का वियतनाम में जो बचपन बीता वहां से। उनके पिता बो, जिनका असल नाम विन बुई था, वो 1940 के दशक में उत्तरी वियतनाम में पैदा हुए।
अब देखिए, उनका बचपन ऊपर से देखने पर तो ठीक ठाक लगता है। पिता शिक्षक थे, फ्रांसीसी औपनिवेशिक सरकार में काम करते थे, तो थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। लेकिन घर के अंदर ना एक भावनात्मक दूरी थी, पिता अक्सर दूर रहते थे,
अच्छा,
और उस समय राष्ट्रवादी भावनाएं भी बहुत तेज थीं, तो उनका परिवार थोड़ा अलग थलग महसूस करता था। तो बो जो हैं वो अकेलेपन में बड़े हुए, किताबों में ज्यादा सुकून मिलता था उन्हें।
तो मतलब बाहर से सब ठीक था पर अंदर एक खालीपन था। और फिर तो 1954 आ गया, जिनेवा समझौता, वियतनाम का विभाजन, उसने तो दुनिया ही बदल दी होगी उनकी।
हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। उत्तर में कम्युनिस्ट शासन आ गया, तो उनके परिवार ने फैसला किया कि दक्षिण भागना पड़ेगा।
सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, अपना घर, जमीन, सब। और सबसे दर्दनाक जो थी, वो ही बताती हैं, वो था बो का अपनी प्यारी दादी से बिछड़ना। ये उनकी जीवन का पहला बड़ा विस्थापन था, एक ऐसा जख्म जिसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी और शायद भविष्य के जो पनायन थे उनकी नींव रख दी। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सुरक्षा, वो कितनी अस्थायी चीज हो सकती है।
और ठीक ही, माँ यानी हान ट्रान, उनका अनुभव कैसा था? क्या वो भी इसी उथल पुथल से गुजरी थी?
माँ का बचपन बिल्कुल अलग माहौल में बीता। वो दक्षिणी वियतनाम में पली बढ़ी और वहां अस्थिरता और गरीबी ज्यादा थी। उनका परिवार लगातार, मतलब युद्ध और असुरक्षा से बचने के लिए, जगह बदलता रहता था।
ओहो।
उनके पिता थी के नाना आकर्षक तो थे पर भरोसेमंद नहीं थे बिल्कुल, और माँ को ही, मतलब नानी को, घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। तो माँ जो है वो बचपन से ही बहुत तेज थी, बहुत दृढ़ थी। उन्होंने सोच लिया था कि शिक्षा ही बाहर निकलने का जरिया है।
अच्छा,
तो उनका बचपन लगातार संघर्ष की कहानी है और अकेले मजबूती दिखाने की। जहां बो का आघात नुकसान और चुप्पी से जुड़ा था, वहीं माँ का आघात था लगातार संघर्ष करना और भावनात्मक रूप से अकेले पड़ जाना।
दो बिल्कुल अलग अनुभव, पर दोनों ही बेहद मुश्किल।
तो ये मिले कैसे फिर इतनी उथल पुथल के बीच?
वो लोग 1960 के दशक में मिले थे साइगोन में, एक यूनिवर्सिटी में। दक्षिण वियतनाम उस वक्त राजनीतिक रूप से बहुत बहुत अस्थिर था। अमेरिकी दखल बढ़ रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, युद्ध का खतरा हर वक्त था। इसी माहौल में बो, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, और माँ, जो साहित्य की छात्रा थी, उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। थीबुई ने उनकी वो शुरुआती प्रेम कहानी बड़े ही कोमल तरीके से दिखाई है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की थोड़ी सी शांति होती है ना, वैसी।
फिर शादी हुई, बच्चे हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश की होगी। वो इंजीनियर बन गए माँ टीचर? हाँ, हाई स्कूल टीचर। एक सामान्य जीवन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन युद्ध का साया वो तो लगातार बना ही रहा। हर फैसले पर हावी था वो। एक अनकहा डर हमेशा मौजूद रहता था।
और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 30 अप्रैल 1975, साइगोन का पतन।
हाँ, उत्तरी वियतनामी सेना शहर में दाखिल हुई, दक्षिणी सरकार गिर गई। अब बो और माँ, जिनका दक्षिणी शासन से किसी ना किसी तरह का जुड़ाव था, उनके लिए वहां रुकना जानलेवा हो सकता था।
और यहीं से वो भयानक हिस्सा शुरू होता है उनकी कहानी का, वियतनाम से पलायन, जिसे हम बोट पीपल के दौर के नाम से जानते हैं।
सही कहा। और थी बुई ने उन पलों को अपने चित्रों में ऐसे उतारा है कि दिल दहल जाता है। भागते हुए लोग, खचाखच भरी नावें, अनिश्चित भविष्य का डर। बो और माँ ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक बहुत छोटी सी खतरनाक मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर दक्षिण चीन सागर पार करने का फैसला किया, जान जोखिम में डालकर।
सोचकर ही डर लगता है।
वो सफर भयानक था। समुद्री डाकू, तूफान, भूख, प्यास, हर पल मौत का खतरा। वो उन लाखों लोगों में से थे जो उस दौर में वियतनाम से भागे थे।
और ये बात कि इसी खतरनाक सफर के दौरान मलेशिया के एक शरणार्थी शिविर में थी बुई का जन्म हुआ। उनके जन्म प्रमाण पत्र पर किसी शहर का नाम नहीं है, बस शिविर का नाम लिखा है। ये अपने आप में कितना कुछ कहता है उनके विस्थापन के बारे में।
बहुत मार्मिक प्रतीक है ये। कई महीने उन शिविरों में बिताने के बाद आखिरकार परिवार को अमेरिका में बसने की इजाजत मिली। वो लोग 1970 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया पहुंचे।
लेकिन यहाँ एक और संघर्ष शुरू हुआ होगा।
बिल्कुल, नई भाषा, नई संस्कृति, एक अजनबी जमीन पर रोजी रोटी कमाना। वियतनाम में उनके पास जो डिग्रियां थीं, जो अनुभव था, अमेरिका में उसकी कोई पहचान नहीं थी। बो और माँ ने परिवार चलाने के लिए जो भी काम मिला वो किया।
और यहीं से कहानी फिर थी बुई के अपने अनुभव पर आ जाती है। वो अपने माता पिता के इसी संघर्ष और उस अनकहे अतीत के साये में पली बढ़ी।
हाँ, उनके माता पिता शारीरिक रूप से तो वहां थे, पर भावनात्मक रूप से जैसे कहीं और ही थे। पिता अक्सर चुपचाप रहते थे, अपने काम में या किसी बहुत छोटी सी चीज में खोए रहते थे, जैसे वो चावल पकाने के तरीके को बिल्कुल परफेक्ट करने की धुन में रहते थे।
अच्छा,
हाँ, शायद ये दुनिया की जो अनियंत्रित उथल पुथल थी, उससे निपटने का उनका अपना तरीका था, किसी चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश। और माँ सख्त थीं, आलोचनात्मक थीं, कभी कभी गुस्सैल भी। उनका संघर्ष जैसे एक कवच बन गया था।
प्यार नहीं था क्या?
प्यार था, लेकिन वो त्याग में दिखता था, जरूरतें पूरी करने में दिखता था, गले लगाने या मीठे बोलों में नहीं। ठीक को हमेशा उनसे एक एक दूरी महसूस होती थी, एक खालीपन सा।
और फिर वो पलाया जिसने इस किताब को जन्म दिया। ठीक है, अपने बेटे का जन्म, ये एक कैटलिस्ट बना कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। जब थी खुद माँ बनी, तो उन्हें अपने बेटे के लिए जो एक गहरा प्यार महसूस हुआ, जो जिम्मेदारी महसूस हुई, उसने उन्हें अपने ही बचपन पर, अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ये डर सताने लगा कि भाई वो एक अच्छी माँ कैसे बन सकती हैं जब उन्होंने खुद वैसा भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं किया था। यही सवाल था जिसने उन्हें अपने माता पिता की कहानी जानने के लिए प्रेरित किया। ये समझना जरूरी हो गया कि उनके माँ बाप वो ऐसे क्यों थे।
और ये जानना आसान नहीं रहा होगा। 10 साल लगाए उन्होंने अपने माता पिता के इंटरव्यू लिए।
बिल्कुल, ये प्रक्रिया ही अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, सालों की चुप्पी को तोड़ना, मुश्किल सवाल पूछना, उन यादों को कुरेदना जिन्हें बो और माँ शायद भूल जाना चाहते थे। थी ने बहुत धैर्य से सुना, रिकॉर्ड किया और फिर उन कहानियों को चित्रों में ढाला। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, ये सुनने, समझने और फिर कला के जरिए उन घावों को भरने की कोशिश थी, जिन्हें शब्दों ने नहीं बल्कि चुप्पी ने और गहरा कर दिया था।
तो क्या ये प्रक्रिया उनके माता पिता के लिए भी कुछ हीलिंग जैसी रही होगी?
शायद, हाँ शायद ये उनके लिए भी एक तरह का उपचार साबित हुई। उन्हें अपनी कहानियों का बोझ थोड़ा हल्का करने का मौका मिला।
तो किताब का अंत सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि उसे एक नए नजरिए से देखना है।
हाँ,
अपने माता पिता की यात्रा को, उनके संघर्षों को समझकर थी उन्हें सिर्फ ऐसे माँ बाप के तौर पर नहीं देख पाती जिनमें कमियां थी, बल्कि उन लोगों के रूप में देख पाती हैं जो मुश्किल हालात से जूझकर जिंदा बचे।
बिल्कुल, और यहीं पर किताब का जो शीर्षक है द बेस्ट वी कुड डू वो सार्थक होता है कि उन्होंने वाकई जितना अच्छा कर सकते थे किया. और यही मेरे ख्याल से किताब का केंद्रीय दर्शन है कि सहानुभूति जो है वो ऐतिहासिक संदर्भ से जन्म लेती है. हम किसी के कामों को, खासकर अपने प्रियजनों के कामों को, तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम उस दुनिया को, उन हालातों को न समझें जिन्होंने उन्हें वैसा बनाया है.
उनकी चुप्पी, उनका गुस्सा, उनकी दूरी,
हाँ, ये सब उनके अनुभवों का नतीजा थे.
ये जो विचार है कि पहचान हमें विरासत में मिलती है, पारिवारिक इतिहास, राष्ट्रीय आघात, सांस्कृतिक यादें, ये सब मिलकर हमें बनाते हैं. किताब ये दिखाती है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम व्यक्तिगत जीवन पर एक अमित छाप छोड़ जाते हैं.
निश्चित रूप से. और ये मानती है कि लोग अक्सर उन परिस्थितियों से बंधे होते हैं जो उनके काबू से बाहर होती हैं. और प्यार, प्यार हमेशा नर्म शब्दों या गर्म जोशी में ही जाहिर नहीं होता. कभी कभी ये जिंदा रहने का, परिवार को बचाने का खामोश कठिन संघर्ष होता है. वो और माँ का प्यार उनके त्याग में था, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की उनकी जो अथक कोशिश थी उसमें था, भले ही उसका तरीका अलग था.
अगर हम प्रेरणा की बात करें तो थी बुई की प्रेरणा तो साफ है, अपने अतीत को समझना, माँ बाप से जुड़ना, खुद को बेहतर समझना, ताकि वो जो विरासत में मिला भावनात्मक बोझ है उसके चक्र को तोड़ सकें. लेकिन उनके माता पिता की प्रेरणा क्या थी इस सबके पीछे?
उनके माता पिता की मुख्य प्रेरणा थी बस जीवित रहना, सर्वाइवल, युद्ध से बचना, उस खतरनाक समुद्री यात्रा से बचना, और फिर अमेरिका में एक नई शुरुआत करना, अपने बच्चों को सुरक्षा देना, उन्हें अवसर देना. उनका हर फैसला इसी जरूरत से तय होता था.
लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी.
हाँ, इस लगातार सर्वाइवल मोड में रहने की एक कीमत थी, भावनात्मक जुड़ाव, अभिव्यक्ति, वो कहीं पीछे छूट गए.
और मुश्किलों का सामना करने के उनके तरीके भी बड़े अलग थे. जैसे आपने बताया, वो चुप्पी में चले गए और माँ ने कठोरता का कवच पहन लिया.
हाँ, उनका तरीका था खामोश सहनशीलता. बाबा ने शायद नियंत्रण खो देने के डर से जीवन के छोटे नियंत्रणीय पहलुओं में परफेक्शन ढूंढकर संतुलन बनाने की कोशिश की, जैसे वो खाना पकाने वाली बात. और माँ ने अपनी ताकत और नियंत्रण को बनाए रखकर संघर्ष किया. उन्हें शायद लगता था कि भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती.
जबकि ठीक का तरीका बिल्कुल उल्टा था. उन्होंने चुप्पी को तोड़ा, अतीत को खोदा और उससे कला के जरिए अभिव्यक्त किया. ये दिलचस्प है कि एक ही परिवार में इतने अलग अलग तरीके हो सकते हैं मुश्किलों से निपटने के.
बिल्कुल. और यही दिखाता है कि हर पीढ़ी अपने तरीके से रास्ते ढूंढती है. जहां माता पिता ने अतीत को दबाया, बेटी ने उसे उजागर किया. ठीक के लिए कला और कहानी कहना यही जीवित रहने का और शायद ठीक होने का जरिया बना.
चलिए अब उन कुछ निर्णायक घटनाओं पर फिर से नजर डालते हैं जिन्होंने इस परिवार की कहानी को घड़ा. कौन सी घटनाएं आपको सबसे अहम लगती हैं?
मेरे विचार में 3-4 घटनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है. पहली, जैसा हमने बात की, 1954 में वियतनाम का विभाजन.
हाँ.
इसने बोओं को उनकी जड़ों से काट दिया और उनमें वो नुकसान और विस्थापन का एक स्थायी भाव पैदा कर दिया. ये उनके जीवन का पहला बड़ा आघात था.
दूसरी,
निश्चित रूप से 1975 में साइगोन का पतन. उसने उनके जाने पहचाने जीवन का अंत कर दिया.
हाँ, वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो उनके अस्तित्व का संकट था. उसने उन्हें नागरिक से शरणार्थी बना दिया, उन्हें उस जानलेवा नाव यात्रा पर धकेल दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया. उसने उन्हें दिखाया कि उनका अपना देश भी उनके लिए पराया हो सकता है.
और तीसरी घटना, जो शायद थोड़ी कम नाटकीय लगे लेकिन कहानी के लिए उतनी ही जरूरी है, वो है थी के बेटे का जन्म.
मैं सहमत हूँ, बिल्कुल. जहां ऐतिहासिक घटनाओं ने उनके माता पिता के जीवन की दिशा तय की, वहीं इस बहुत ही निजी घटना ने इस किताब को जन्म दिया.
माँ बनने के अनुभव ने थी के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया. अपने बच्चे के प्रति जो उन्होंने तीव्र प्रेम महसूस किया, सुरक्षा की भावना महसूस की, उसने उन्हें अपने माता पिता की भावनात्मक दूरी पर सवाल उठाने पर मजबूर किया. इसी घटना ने उन्हें अतीत की ओर मुड़कर जवाब तलाशने की हिम्मत दी. इसने उन्हें सिर्फ एक बेटी की भूमिका से निकालकर एक जिज्ञासु इतिहासकार और एक सहानुभूति रखने वाली इंसान की भूमिका में ला दिया.
और शायद चौथी अहम कड़ी वो 10 साल लंबी इंटरव्यू की प्रक्रिया ही थी.
हाँ, उसे भी एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है. जरूर, दशकों की चुप्पी को तोड़ना, मुश्किल विषयों पर बात करना, ये अपने आप में क्रांतिकारी था. इन साक्षात्कारों ने न सिर्फ थी को जानकारी दी बल्कि बो और माँ को भी अपनी कहानियों का बोझ साझा करने का मौका दिया।
ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे।
नहीं, ये सुनने और समझे जाने की प्रक्रिया थी जिसने शायद परिवार के भीतर कुछ हद तक सुलह और जुड़ाव का रास्ता खोला। इसने दिखाया कि कहानी कहने और सुनने का जो सरल सा काम है वो भी कितना उपचारक, कितना हीलिंग हो सकता है।
तो इन अनुभवों से, इस पूरी कहानी से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी आज के श्रोताओं के लिए क्या मायने रखती है?
देखिए, ये कहानी कई गहरे और सार्वभौमिक सबक देती है। सबसे पहले तो ये जो अंतर पीढ़ीगत आघात है, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, उसके असर को बहुत साफ तौर पे दिखाती है।
ये समझाती है कि कैसे माता पिता के अनकहे अनुभव, उनके दर्द, उनके डर, अगली पीढ़ी के भावनात्मक जीवन और रिश्तों को अनजाने में प्रभावित करते हैं, और इसे पहचानना ही शायद बदलाव की दिशा में पहला कदम है।
और सहानुभूति का महत्व, ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि हम दूसरों को, खासकर अपने करीबियों को, तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम उनके संदर्भ को, उनके इतिहास को न समझें। उनके व्यवहार के पीछे का क्यों जानने की कोशिश करना जजमेंट या निर्णय की जगह सहानुभूति पैदा कर सकता है।
बिल्कुल।
साथ ही ये पितृत्व और मातृत्व के अनुभव पर भी एक नई रोशनी डालती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि माता पिता बनना हमें अपने खुद के पालन पोषण पर सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये तो है।
ये हमें उन भावनात्मक पैटर्न्स को पहचानने का मौका देता है जो हमें विरासत में मिले हैं, और फिर हमें ये चुनने का अवसर देता है कि हम उन्हें दोहराना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं।
और कहानी कहने की ताकत, वो तो साफ जाहिर है। थी बुई का पूरा प्रोजेक्ट ही इस बात का सबूत है कि जो दबी हुई मुश्किल कहानियां हैं उनको आवाज देना कितना जरूरी और शक्तिशाली हो सकता है। संवाद, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, वो समझ और जुड़ाव पैदा कर सकता है।
और आज के दौर में जब दुनिया भर में विस्थापन, शरणार्थी संकट, पहचान के मुद्दे इतने ज्वलंत हैं, ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है।
सही कहा।
ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी खबरों और आंकड़ों के पीछे इंसानी चेहरे होते हैं, परिवार होते हैं, उनके अपने सपने और डर होते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सहानुभूति डर से ज्यादा ताकतवर हो सकती है।
तो इस गहन चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें संक्षेप में कहनी हो तो वो क्या होंगी?
ठीक है, तीन मुख्य बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। कह सकते हैं, अपने माता पिता को सिर्फ दूर या त्रुटिपूर्ण समझने की बजाय उन्हें उन उत्तरजीवियों, उन सर्वाइवर्स के रूप में देखना जिन्होंने कल्पना से भी परे मुश्किलों का सामना किया है। ये महसूस करना कि उनकी जो कथित भावनात्मक कमियां थीं वो असल में उनके सहन करने की क्षमता और उनके संघर्ष के निशान थे। ये एक गहरा भावनात्मक बदलाव ला सकता है।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
वो ये कि इतिहास व्यक्तिगत होता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं आम लोगों के जीवन पर, उनके रिश्तों पर, यहाँ तक कि उनके शरीर पर भी अपनी छाप छोड़ती हैं। भुई परिवार की कहानी वियतनाम के इतिहास का एक माइक्रोकॉज्म है, एक छोटा रूप है जो दिखाता है कि कैसे भू राजनीति हमारे अंतरंग जीवन का हिस्सा बन जाती है, और इसी से जुड़ा है अंतर पीढ़ीगत आघात की अवधारणा को समझना, कैसे आघात पीढ़ियों तक यात्रा करता है।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि,
वो है किताब का शीर्षक ही, द बेस्ट वी कुड डू। ये क्षमा और स्वीकृति का एक शक्तिशाली मंत्र है। ये समझना कि अपनी परिस्थितियों, अपनी सीमाओं, अपने ज्ञान और अपने जख्मों को देखते हुए हमारे प्रियजनों ने शायद वही किया जो वे उस समय कर सकते थे। सच्ची समझ अतीत को बदलने की चाह से नहीं आती, बल्कि ये स्वीकार करने से आती है कि वो वैसा क्यों था। और सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा और सुनने की इच्छा सुलह और गहरे जुड़ाव का रास्ता खोल सकती है।
तो थीबी की ये कहानी हमें अपने ही परिवारों के इतिहास को कुरेदने, अनकही कहानियों को सुनने और सहानुभूति विकसित करने की प्रेरणा देती है।
हाँ बिल्कुल, ये याद दिलाती है कि हर परिवार की अपनी जटिल कहानी होती है जो अक्सर बड़े ऐतिहासिक पन्नों से जुड़ी होती है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने प्रियजनों को पूरी तरह समझने के लिए उनके अतीत और उनके संघर्षों को जानना या कम से कम जानने की कोशिश करना जरूरी है। ये समझ ही माफी और गहरे रिश्ते की बुनियाद बन सकती है।
तो एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अपने परिवारों में भी ऐसी अनकही कहानियां या अनसुलझे अतीत के हिस्से हैं जिन्हें जानने और समझने की जरूरत महसूस होती है? हम अपने प्रियजनों के अनुभवों के प्रति अपनी जिज्ञासा और सहानुभूति को कैसे बढ़ा सकते हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।